ये साथ से उन्हें कही ना, मैंने अलग निकाल के खाया था रोटी से ना। पक्की बात है, अभी अगली लाइन से चले गए लोग तो आपने फिर दो लोग आगे आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आयात पे चलने से पहले थोड़ा सा सबक का खुलासा। हम अब इसमें फिर तरतीब जमानी के एतबार से अंबिया कराम के किस्से देखेंगे। सबसे पहले कौम समूद का किस्सा आएगा और उसके बाद फिर दूसरी फॉर्म में। अगर आप ये कह लीजिए कि इस पूरे हिस्से में से हम यही चीज सीखेंगे कि हक के रास्ते के रोड़े हमेशा एक ही जैसे होते हैं, अंबिया कराम मुख्तलिफ हालात से गुजारे जाते हैं लेकिन उनके साथ दूसरों का मामला भी एक ही जैसा रहा और इंजाम भी अंबिया कराम का एक ही जैसा हुआ। एक चीज आप जरूर छेड़ने के दौरान, और वो क्या कि वो नबी जिनके नाम आज लेकर हम इतनी मोहब्बत महसूस करते हैं, अपने दौर में लोग उनको क्या कहते थे। तो यहां से ये चीज भी हम अपने लिए लेंगे कि अगर आज हमें दीन की वजह से कुछ बातें सुननी भी पड़ जाएं और कुछ मोहब्बतों से हिजरत करनी भी पड़ जाए तो ये तो नबियों की सुन्नत है। अगर वो लोगों को ही देखते रहते और लोग उनको खुश कर दें और वो लोगों को खुश कर दें तो आज उनके ये तस्करे ना होते। फिर उसके बाद अगली चीज हम आज के सबक में जो देखेंगे, सूरत का नाम शोरा के शायर कौन होते हैं, यानी इस्लाम पोइट्री के बारे में क्या कहता है, क्या शायरी की जा सकती है या सुनी जा सकती है, और क्या शायरी के अंदर इंसान का अगर दिल लगता है तो फिर तरीका है। इंशाल्लाह पोइट्री के बारे में डिटेल से बातें होंगी। फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि जब भी किसी महफिल से उठें तो उसके क्या आदाब है। बहुत ही रिक्कत वाला एंड है सूरत का। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें इसका हक अदा करने की तौफीक दे। चलते हैं आयत नंबर 41 से शुरू करेंगे। औसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, छुटलाया समूद ने भी मुरसलीन को। समूद कौन है? आदि सानी, कौम आद के बचे हुए लोग। देखिएगा एक वक्त में जो लोग अच्छे थे तभी बचे, बाद में उनकी नस्लों में फिर खराबियां आ गई तो उनको भी तबाह बर्बाद करना पड़ा। हिजाज के शिमाल में तबूक जाते हुए रास्ते में आते हैं, आजकल सऊदी अरब का हिस्सा है बेसिकली, मदाइने सालेह के नाम से मारूफ है। तकरीबन 125 मीटर 125 मीटर चौड़ा इलाका है और हिजर नाम का एक पहाड़ी सिलसिला है। कौम पहाड़ों में घर बनाती थी, इसी वजह से इसको कौम हिजर कहा गया। हमने तो इस नाम पे पूरी सूरत पढ़ ली है, तो लिहाजा अब यहाँ से अमल की बातें देखेंगे। इस क़ाल लहुम अखूहुम, जब उनसे उनके भाई ने कहा, कौन थे भाई? सालेहुन, साले। अला तत्तकून, क्या तुम नहीं डरते? डर नहीं लगता किस बात पे? अल्लाह की नाफरमानी करते हुए और मुझे झुटलाते हुए। नीलकुम रसूलीन, बेशक मैं तो तुम्हारे लिए बामानत रसूल हूँ, वही पैगाम। फत्तकुल्लाह वतीउनी, बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। और देखो वमास्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे कोई अजर भी नहीं मांगता, कोई सिला नहीं मांगता। क्योंकि इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरी उजरत तो तमाम जहानों के रब ही के जिम्मे है। बिल्कुल यहाँ तक तो वही बात थी जो पहले भी हम पीछे अंबिया के दूसरे अंबिया के सिलसिले में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो अगली बात है ना, इसको सुनते वक्त आप ये न सोचे कि हजरत सवाले कौम समूद को कह रहे हैं। बल्कि आप अपने ऊपर लीजिए कि ये आपको कहा जा रहा है और मैं अपने ऊपर लूं कि ये मुझे कहा जा रहा है। देखने में सवाल है, क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हकीकत में डांट है। क्या कहते हैं? अतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन, क्या तुम छोड़ दिए जाओगे इन्हीं नेमतों में यहाँ अमन से? ये तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो कुछ तुम्हें मिला है हमेशा तुम इनमें रहोगे? फी जन्नातिन व उयून, बाहों में और चश्मों में, वज़रूइन और खेतियों में, व नखलिन और खजूरों के दरख्तों में, तल उहा जिनके खोशे हजीम बड़े नरम है, वतन हितून मिनल जिबाली बुयूतन फारहीन, और तुम पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाते हो इतराते हुए। यहाँ पे बात पूरी होती है। अगर लफ्जों में ना भी पढ़े तो पहले आप इस पुकार को अपने दिल पर लेके पूछें, क्या मैं अपने इस नरम गरम घर में हमेशा रखी जाऊंगी? ये मेरी अलमारियां, ये मेरे कपड़े, आप अपने घर की एक एक चीज देखें। वास्तव में हम इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं, जरा सा काम हिलता है ना तो हम फौरन उस काम को सेट करा लेते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा ये काम ऐसे है, चलो ठीक है इसको करा ले। कपड़े देखिए, जूते देखे, अपने नरम नरम स्वेटर्स को हाथों में लेकर देखे, आमिनी, क्या जिस अमन चैन सुकून खुशी से आज इन सब चीजों को पाती हूं, क्या हमेशा ऐसी ही रहूंगी? हमेशा ऐसी रहूंगी? क्या मेरी जिंदगी इसी तरह की गुजरेगी जैसी आज है? आप देखिए कि बाथरूम देखें, गर्म पानी, ना नहाना मुश्किल, ना कुछ, और ऐसे ही लगता है कि बस हम कभी इन चीजों से नहीं हटेंगे। लेकिन आप देखिए कि हमारे कितने प्यारे, हमसे भी ज्यादा नरम मिजाज के थे तबीयतों में, उनके भी शौक था लेकिन चले गए दुनिया से। क्या हम अपने घरों में रहेंगे और मेरी चीजें मेरे बाद कौन लेगा? अगर ये बात याद रहे ना तो कभी हम इन घरों और इन चीजों के पीछे अपनी नमाजें ना छोड़ें और अपनी जिंदगियां ना गवाएं। आप पता है कि इस जिंदगी में हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो हमारा वक्त है। जब भी किसी चीज को वक्त देना तो खुद ये आयत लिख लें, इस आयत को आज के दिन एक छोटी सी एक्टिविटी में रख लें, आप इसको अपने हाथों से लिखें, आयत 146, 7 और 8 और 9, और फिर इस पे गौर करें, जहां दिल चाहे इसको लगा लें, क्या मैं ऐसे रहूंगी? हमारा हाल ये होता है, जरा हमारी कोई चीज इधर से उधर कर दे, हमें ऐसे लगता है किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी, किसने हाथ लगाया था मेरी चीजों को। और जब हम नहीं होंगे तो फिर चीजें हमारी कहां होंगी? आतुत्रकूना, ये भी तो कहा जा सकता था कि तुम्हारे पास ये नेमतें हमेशा नहीं रहेंगी। क्या कदर, क्या तुम छोड़ दिए जाओगे? ये लफ्ज छोड़ दिए पे गौर करिएगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तरक यात्रुक, उसे तरक करना, छोड़ देना, फीमा हा होना, जो यहाँ है, आमिनी, आमिन की जमा, बेखौफ और अमन। देखिए अगर आज आफियत चीजों को अल्लाह ने जो हमारी इस्तेमाल की रखी है, जरूरत की है, घर के बर्तन है, सेहत हो तो अच्छा लगता है ना, और सेहत ना हो तो अच्छा लगता है, और दिल खुश है तो इस्तेमाल भी करते हैं, दिल टूटे हो, दिल दुखी हो तो कोई चीज अच्छी लगती है घर की? जो धुले वही पहन लो, जो रखा है वही खा लो। तो आज अगर हमारे पास आफियत है, इस आफियत को बाकी रखवाएं। कैसे? इसको जिसका कहना चाहिए कि इन्वेस्ट करना है, अपने वक्त को सबसे ज्यादा उस चीज में लगाएं जिसका फायदा आपको आगे जाके होगा। और आप किसी को भी अपने सोचे प्यारे को जो बहुत केयरिंग थे। इन दिनों में अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में एक डेथ हुई है, मतलब मुझे इस चीज का तो खैर अल्लाह का फैसला ही है कि जो भी जाता है। इस बात का बड़ा दुख है कि मैं जब भी पाकिस्तान जाती थी तो मैं उनको मिलना चाहती थी। हमारी एक यानी आंटी कहते थे हम उनका, जो मैंने उनकी आखिरी रूप उनका देखा हुआ है ना, जो हम छोटे थे तो वो जवान थी, ये कह लें, प्योर रेड कलर की लिपस्टिक, प्योर गोरी वाइट, और ऐसे थी जैसे रुई का गोला। शौहर की भी लाडली, माँ बच्चे भी माँ के यूं लाड देखते थे कि बस गुड़िया थी। इतनी भरपूर जिंदगी उन्होंने गुजारी, पूरा खानदान उनका नाम लेके कहता कि उस जैसा पहनता कोई नहीं, उस जैसा ओढ़ता कोई नहीं, खाता नहीं। फिर उसके बाद शौहर बीमार हुए, कमर की एक तकलीफ रही, कई साल वो भी बिस्तर पर रहे, उन दिनों में भी वो जहर उस तरह रही। उसके बाद फिर शौहर की जब डेथ हो गई तो आदत थी ना अच्छा पहनने उड़ने की, तो कहती थी कि मैं अपनी उसी आदत के साथ पहनती हूँ तो ये मुझे घूर के देखती हैं। तो अब मेरा मियाँ चला गया तो मेरा पहनने को तो फिर दिल करता ही है ना। यानी इस किस्म की नाइस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नाइस औरत मेरे जहन में आती है, और अखलाक की भी प्यारी। उसके बाद फिर ये जब से समझे कि मेरे बाहर के सफर शुरू हुए, तो पाकिस्तान जब आना पता चलना कि बीमार है, अल्लाह ताला ने उनको कुछ इस किस्म की बीमारी पर डाल दिया। जिस तरह उनकी जिंदगी में उनके मियाँ कई साल बिस्तर पर रह के गए, मियाँ भी बड़े नाइस थे, इसी तरह ये मेरा ख्याल है कुछ 10-15 साल की बीमारी के बाद इस लास्ट वीक में उनकी डेथ हुई है। और जब मैं जाती थी मैं अपने प्यारों को ये कहती थी मैं उनको देखने जाना। इवन रिसेंटली अभी ये जो ट्रिप था लास्ट, था तो दो चार दिन कहीं, देखो उनके घर के करीब हमारा मेरा एक दर्ज था, तो मैंने वहां जो मेरे साथ थे मैंने कहा चले उनको मिलने जाते हैं, कहते हैं चलो। फिर एकदम वो सोचों में पड़ गए, नहीं उनके घर जाए पहले बताना पड़ता है, क्योंकि इस बीमारी में भी उनका ये हाल था, मुझे बताया मेरे घर वालों ने कि उनके घर जाना तो उनकी बहू कहती है कि पहले बताएं, जब कोई आता है फिर उनको उनकी बहू पूरा नहलाती है, साफ कपड़े पहना के मेकअप करा के बिठाती है, फिर किसी को वो मिलते हैं। यानी ये कि उन्होंने अपना एक वो गेटअप नहीं छोड़ा सारी जिंदगी। तो कहती जो मेरे साथी कह रही कि एक दफा हम अचानक चले गए थे उनके देखने, तो हमें काफी देर आधा पौना घंटा बैठना पड़ा, उनके बाद उनकी बहू लाई तो ऐसे लग रहा था कि उनको बिल्कुल तैयार करके लाई है, तो फिर ऐसे बैड फील करते हुए उन्होंने कहा अच्छा फिर ले जाएंगे, और जब चीज फिर पे पड़ती है वो कभी नहीं होती, तब उनकी डेथ हुई है। जब मैं ये आयतें पढ़ रही थी और पिछले पूरे वीक से मेरे देर जहन पर उनका असर था कि वो भी चली गई, कितना उन्होंने इस दुनिया को लिया, एक नीचे छह अंगूठियां पहनी रखना पर्ल और नाइस डिसेंट थी, कोई ऐसी छिछोरी नहीं पहनी ओढ़ी, और चली गई ना, तो वो चली गई तो हमने कब तक रहना। अब उनकी चीजें बट बुट जाएंगी, चीजें इधर उधर हो जाएंगी, चार दिन लोग जरा करेंगे उसके बाद सब खत्म। क्या तुम इस घर की रानी बनी रहोगी, क्या तुम अपने शौहर की इसी तरह मोहब्बतें लेती रहोगी, तुम्हारे बच्चे ऐसे तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहेंगे। फी जन्नाते वयून, ये तो बागात और घर और चश्मे खेतियां ये अल्लाह की नेमते हैं, लेकिन कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ इस दुनिया में है फानी है, जब मैं बाकी नहीं रहूंगी तो मेरी चीजें कैसी बाकी मिलेंगी। तो जो चीजें बाद में लानी है उसको अपने से पहले भेज दो, ताकि ज्यादा अफसोस ना जाने का। फी जन्नत, जन्नत उनकी जमा, उयून आइन उनकी जमा, चश्मे बाग, उस जहां जायते नाजिल हो रही थी वहां तो चश्मे और बाग ऐसे ही थे जैसे आज किसी का घर समंदर के किनारे हो। जरूइन जर से खेती को कहते हैं, नखल खजूरों के दरख, तल हुआ खोशे, और हजीम का लफ्ज देख लीजिए, हा लोए मीम, ये वही लफ्ज है जिससे उर्दू में लफ्ज हजम है। अब इस एक लफ्ज की जरा खूबसूरत मीनिंग्स देखिए, इस एक लफ्ज के मानों में नंबर एक नरम चीज को चबाना, कुचलना, निचोड़ना, कम होना, नरमो नाजुक होना और खींचना। हजीम के अंदर वो सारे काम है जो हमारे मेदे के अंदर खाने के साथ होते हैं। निजाम हसम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, आप कहते हैं खाना हजम हो गया, खाना हजम नहीं हुआ, क्या मतलब? वो है वो बाद में फिर ऐसे अंदर जाके रकीक होकर रतूबतें मिलती हैं और वैसे सॉफ्ट होकर फिर जिस्म में आता है, इस अमल को हजीम कहते हैं। मुराद है हजीम से टपकने वाला, इतना फ्रेश फल के बस उसका जूस चला जाए। तो हजीम तलुन के लिए भी आता है और आखिर में, और तलत जो लफ्ज है ना इसकी भी खूबसूरती देखें, तल उन कहते हैं खजूर का वो शगुफा जो सबसे पहले निकलता है। ये तय कि आप में से कभी किस दरख्तों पे उगी हुई देखिए जी, बस उसके सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो एक बिल्कुल एक कच्ची सी डंठल डंठल सी निकलती है ना उसको तल कहते हैं, पहला फल होता है, तलू हुआ है ना, तलू होने से याद रखेंगे। इसके बाद खजूर का फल जिस शक्ल में आता है ना उसको बल्ख कहते हैं, बल्ख, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पक जाता है ना तो बुसर, और बुसर के बाद फिर जब उसमें तरी आती है तो रुतुब, ये रुतुब खजूरें तो हम खाते ही है ना, मीठी जो होती हैं, और आखिरी मरहला फिर होता है तमर, सूखी खुश खजूर का। इतने लफ्ज, ये पीली खजूरें जो आप कहते हैं ना डोके जिसको बोलते हैं या जो कच्ची सी होती हैं, बस वो ये शुरू की कुमराहल होंगे, तल नहीं होगी तो बल्ख होगा या उसके बाद बुसर होगा। ये अरबी जुबान की वसत कि एक नाम के लिए कितने लफ्ज हैं। खजूरें जो तुम्हारे घरों में आती हैं, खाते हो पीते हो, तुम्हें पता है ये हमेशा नहीं रहनी, और ये सब कुछ इसके बाद खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप देखिए, तुम ये सब कुछ करके तभी भी अच्छा था कि चलो अल्लाह के बंदे बने रहते हैं, लेकिन तुम्हें बंदा बनना नहीं आता, तुम्हें नेमते रास नहीं आती। तन ही तूना नून हा, तन ही तूना हा ता नून हतना, इंग्लिश में आप इसको समझ लें कार्विंग करना, इन ग्रेडिंग, इनग्रेड करते हैं ना कुछ चीजों को, जैसे पत्थरों के अंदर ऐसे थोड़ी थोड़ी निशान बना के کچھ لوگ اپنے نام بھی لکھاتے ہیں اور کچھ چیزیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی طاقت دی تھی کہ اپنے ناخنوں سے یہ گھر بناتے تھے, اور آج بھی یہ موجود ہے. پتھروں کو ایسے کاو کرتے, کاونگ کہہ لیں, اس کے اندر کھود کھود کے پھر ایک خالی ہول بنا کے کمرہ بنا لیا, پھر دوسری جگہ کے. کیوں؟ ان کی عمریں 200-300 سال لمبی ہوتی تھی, تو مٹی چونے کے گھر ان کی زندگی میں گر جاتے تھے, تو اس کے لیے پتھروں میں گھر تھے. لیکن من الجبالی بیوتن, بیتن کی جمع فارحین, اتراتے ہوئے. یہ بڑا برا مرض ہے. دیکھیے دو نام ہیں, فرح اور مرح, یہ دو بیماریاں ہیں قوموں کی. اللہ کہتا گھر بناؤ لیکن فارحین نہیں, تکبر کے لیے اکڑتے ہوئے, میرا گھر اتنا بڑا, تیرا چھوٹا, میرا بڑا, اس طرح سے خوش ہوتے تھے. فرح کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی خوشی, شوخیاں بگاڑنا, نخرے کرنا, ایسی چیزوں کے اوپر, یعنی زیادہ وقت لگانا جس پہ کچھ نہیں. گھر تو آج بھی آرام سے بن جاتا ہے, پیسہ اور وقت کس پہ لگتا ہے؟ فائنل ٹچز پہ لگتا ہے, اور فائنل ٹچز میں فرق ہوتی ہے. میچنگ چیزیں, میچنگ پلا, یہ تصنع, تکلف, فنکارانہ مہارت کا مظاہرہ کرنا, اترانا, فخر و غرور, یہ سب کچھ تم کرتے ہو. آج بھی دیکھیے, پھر وہی بات آ گئی جو پچھلے سبق کے آخر میں تھی, گھروں کی غیر ضروری آرائش اور فن کے مظاہرے, ایک سے بڑھ کر ایک. گھر ایسے لگتا ہے کہ جینے کا مقصد ہی گھر بنانا ہو گیا, اور انہی گھروں میں پڑھ کر پھر نمازیں بھول گئے. کافت تک اللہ حواتیون, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ولا تطیع امر المسرفین, اور مت مانو حد سے بڑھنے والوں کا حکم. یہ کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں, جو ہر وقت تمہاری نظریں دنیا میں دیکھے, وہ آیا, سنا ہے, ادھر آیا, سیل لگی ہے, یہ میں کیٹلاگ لائی ہوں, یہ کیا ہے, وہ کیا. مصرف, اسراف کرنے والے, پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں خواہشوں پہ, صرف خواہشوں پہ, اللہ کے راستے میں نہیں. وہ تو فرائض بہت ہے, ماشاء اللہ, وہی کافی ہے. ایکسٹرا کون اپنی ذات پہ دینا, یہ بندے کے بخیل ہونے کی نشانی ہے. اس یاد رکھیں, اس آیت کے ساتھ سمجھ لیں, جتنا جس کو اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا شوق ہوگا نا, فارحین, اتنا اس کو دین پہ خرچ کرنا مشکل لگے گا. اور وہ عثمان غنی کو پھر یاد کر لیں, اس کا اپوزٹ بھی ہے. جس کو اللہ کے راستے میں دینا آسان لگتا ہے, اس کو پھر اپنی ذات پہ ایک ایک پہنی چبھتی ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے, اس کے بغیر بھی گزارا ہوتا ہے. کون ہے مصرف؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. فساد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو قبول نہ کرنا اور اس سے بگاڑ آنا. مثلا دیکھیے, اللہ نے کہا عورت بیٹھے گھر میں, گھر صاف کرے اپنی گھرداری اور اس کے چیزوں کو دیکھے, عورت باہر نکل گئی. اللہ کہتے عورت اپنے آپ کو چھپا کے نکلے, عورت باہر نکلی تو پورے ایکسپوجر سے نکلی. جہاں بھی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے وہاں فساد ہوگا. بندوں کے بندوں سے تعلق بگڑے وہ بھی فساد ہے, اور بندوں کے رب سے تعلق بگڑے وہ بھی فساد ہے, اور تم اصلاح نہیں کرتے. قالو, اب قوم کا جواب سنیے, قالو انما انت من المسحرین, انہوں نے کہا سوالے, تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ شخص. آپ اس جملے کو آج کی انگلش کے جملے سے سمجھ لیں گے تو آسان ہے, یو آر کریزی. تمہیں کیا ہو گیا؟ کریزی ہو گئی ہو دین کے معاملے میں. یہ جملہ, ہر وقت دین دین دین, ہنسو نہیں, خوش نہیں ہو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, تم بس, تم پہ کسی کا اثر ہو گیا, تم باتوں میں آ گئے ہو. آپ نے کبھی کسی انسان کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا؟ جب آنکھیں اوپر چڑھتی ہیں نا, تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. کسی دنیا سے جانے والے کو آپ کتنا بلا لیں, کتنا بلا لیں, وہ پلٹ کے نہیں آتا. اسی طرح دنیا کے نشے میں مگن شخص جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے بھی یہی ساری چیزیں آتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھتا ہے. اب وہ جب کسی کو دیکھتا, لا اجری ما سلکم علیہ من اجر, تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے, نہ کوئی دنیا کی خواہش, نہ کوئی عزت کی, نہ شہرت کی, اور دن رات اس کو ایک ہی دھن, تو کیا کہتے ہیں؟ انو مینو کما من سفہا. یہ ہے وہ نقطہ صحابہ کا بھی اور نبیوں کا بھی. ان وہ رئیس, وہ سردار جو کفر اور شرک کے دائی تھے اور حق کی مخالفت میں پیش پیش, اپنے دل کو کیسے خوش کرتے تھے؟ نبیوں کے خلاف باتیں کر کے. لیکن پھر لوگ بھی تو پوچھتے ہی تھے نا کہ بھائی کیا بات ہے, تم نہیں نبی کے پاس جا رہے, کیا ہوا؟ نہیں ایکچولی बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती माने, नहीं वो सब ठीक है, हम नहीं मस्जिद जाते, नहीं वो मस्जिदें ठीक ही नहीं आजकल की, वहां सिक्योरिटी नहीं है, वहां मौलवी झगड़ते रहते हैं, फिर जुम्मे में क्यों नहीं गए खुतबे में, वो मौलवी साहब तो बस पैसे मांगते रहते हैं, सारे मुर्दे दूसरे पर डाल के हम नहाए धोए साहब। याद रखिए ये अच्छी बात नहीं होती। इस कौम ने हद से बड़ा हुआ एक मुतालबा किया, उसका जिक्र आगे आ रहा है। कहने लगे मानता इल्ला बशरो मिसलोना, तू तो बस हम ही जैसा एक आदमी है। फाति भी आया तेरे इनकुन तमिन सादिकी, बस ले आओ, अगर बस ले आओ एक निशानी अगर तुम सच्चे हो, कि भाई अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ। निशानी मांगी, मौजजा मांगा। खैर قال هذه ناقة, साले ने कहा ये ऊंटनी है। नाका क्या है? फीमेल कैमल, ठीक है, ऊंट होता है ना, और उसी के से फिर ऊंटनी। ये है एक ऊंटनी। शिरबन, इसके पीने की बारी है। देखिए एक लफ्ज होता है शर्ब, शरीबा, पीना, लेकिन शीन की जेर होगी ना तो वो जगह जहां से दिया जाता है, ठीक है। एक दिन इसकी बारी है, वलकुम शिरब, और एक तुम्हारे पास दिन है, यौम मालूम, जिसका सबको पता है। असल में इसकी कहानी पीछे आपको बताई थी कि इस कौम ने एक मुतालबा किया था, ऐसे ही नबियों को आजमाते थे कि देखें भला ये कितने बड़े वलीउल्लाह, अच्छा क्या ये सामने जो एक छोटा सा पहाड़ है ये खुले फटे, इसमें से एक ऊंटनी निकले, फिर वो हमारी आंखों के सामने बच्चा दे, फिर वो बच्चा हमारी आंखों के सामने बड़ा हो जाए, तुम ये कर सकते हो? क्यों भाई, ये करोगे ना फिर हम तुम्हें नबी मान लेंगे। हालांकि नबियों ने कभी नहीं कहा कि हम शोभदाबाज हैं या हम जादूगर हैं या हम कुछ करते हैं, लेकिन ये कौमें उल्टे सीधे मुतालबे इसलिए करती थी कि नबियों को जरा बेबस कर दें। उस दौर में अल्लाह ताला की सुनना चाहिए थी कि जो मुतालबा किया मनवा दिया। हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला आपके लिए क्या मुश्किल है, और आज हम अपनी जुबान में करें तो माँ के पेट से बच्चे को फाड़ सकता है, फाड़ के निकाल सकता है अल्लाह, तो बाहर से भी निकालता। कहते हैं कातिबा नाम की एक छोटी सी चट्टान थी, रॉक फटी, उसमें से एक मोटी ताजी ऊंटनी निकली। अपने बोझ से वो इधर से उधर लुढ़क रही थी। पहले जब वो निकली तो इनके जानवर उसको देख के भाग गए, फिर उसने इनको बच्चा, इनके सामने बच्चा पैदा किया, बच्चा भी बड़ा हो गया। दो चार दिन तो बड़े खुश रहे कि वाकई ये काम ठीक है। अब ये नहीं पता था कि ऊंटनी तो मांग ली तो वो खाएगी भी, यहां बहुत बड़ी बात है कमल की, इसलिए तवज्जो रखिएगा। खैर अब ऊंटनी थी तो जिंदा ऊंटनी थी, पिएगी भी तो खाएगी। जब वो पानी पीने जाती कुओं पे तो सारा पानी पी जाती, तो इनके जानवरों के लिए पानी ना बचता। खेतियां जाती तो खेती चर चुक जाती तो इनको ना मिलता। अब इनके दिल में गिरा पड़ गई और ये उसके दुश्मन हो गए। हजरत साले ने कहा वला तमसूह बिसूइन, देखो इसको बुरे इरादे से हाथ ना लगाना, क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि अब ये निभा नहीं पा रहे अपनी ये ख्वाहिश, वरना क्या होगा, फयाखुज़कुम अज़ाब यौम नज़ीम, वरना एक बड़े दिन का अज़ाब तुम्हें आके पकड़ लेगा। लेकिन वही ज़ालिमों ने किया, फ़ाक़रूहा, काट दिए उसके पट्टे। ये जो अक्र है ना, उकर पाँव, अगर आप देखें तो पाँव के पीछे एक मोटी सी नाड़ होती है ना टांग, अगर उसको काट दें तो इंसान जिंदा नहीं रहता, गिर पड़ता। उस टांग की वो रग को काट दिया, जब वो कटी तो ऊंटनी गिरी। फस बहु नादमीन, फिर हो गए वो पछताने वाले। क्यों? जो ही ऊंटनी को, जब वो ऊंटनी के पाँव काट सकते थे तो अल्लाह तो इससे बहुत बड़ा गालिब था कि इनको काट दे। लिहाजा फ़ाख़ज़हुम अज़ाब, बस इनको आप पकड़ा अज़ाब ने। इन्न फ़ी ज़ालिका लाया, बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन इनमें से अक्सरियत मानने वाली नहीं। वइन्ना रब्बका, और बेशक आपका रब, लहु वल अज़ीज़ुर रहीम, वो ग़ालिब और रहम वाला। क्या निशानी है इस वाक़े में, बहुत बड़ा मैसेज है सबक में। बाज़ दफ़ा हम अल्लाह से वो नेमतें मांग लेते हैं जिसके तकाजे फिर अदा नहीं कर पाते। उनकी ऊंटनी थी, और किसी की बात है कि आज पाकिस्तान जो है ये भी हजरत सालेह की वो ऊंटनी है। हमने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है आ गया पाकिस्तान। आज हम उसको संभाल ही नहीं पा रहे। बस दफा इंसान दीन के नाम पे या दुनिया के नाम पर कोई चीज तो मांगता है, अल्लाह बस को इंतजाम कर दे सीखने का, और जब वो सीखने के तकाजे होते हैं तो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी बन जाती है। फिर उसकी चोट कहीं दुनिया पे पड़ती है, कहीं माल पे पड़ती है, कहीं खाने पे पड़ती है, फिर बर्दाश्त नहीं होता। आप बच्चा मांगते हैं, बच्चा बच्चा बच्चा, आप सोचते हैं सारी सारी खुशी ही बच्चे के साथ है। जब बच्चा पैदा हो गया पता चला रातों की नींद गई, थकन, काम, ये वो, कितने काम होते हैं। बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, मिल गया माशाल्लाह, अब सारा दिन उसी में जुटे हुए, आखिर नमाजें भी छुटती हैं। बात ये निशानी है कि जब कोई नेमत मांगे तो साथ ही साथ फिर उस नेमत के बाद उसके तकाजे भी निभाने की तौफीक मांगे। देखिए बहुत खुशकिस्मत है वो लोग के जिनको अल्लाह ने बस गुजारे में रखा हुआ और वो गुजारे से चले जाए दुनिया से। यकीन करें जितनी मेरी और आपकी नेमतें हैं ना इसका हिसाब बड़ा सख्त है। इल्म मांग रहे हैं, इल्म मिल रहा है ना, अब इसका हक अदा करना ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबा सफर है। मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ दिन ब दिन वक्त के साथ उनके जज्बे जवान होते हैं। क्यों होते हैं? इल्म भी बढ़ रहा है, ईमान भी बढ़ रहा है। उनकी जिंदगी किस चीज पे है? इसी साथी की बात शहदास जिक्र की थी, किसी ने उनसे पूछा कि हमारे नूरुल्लाह नूर कोर्स की क्या रेड लाइन है, तो उन्होंने कहा कि हमारी रेड लाइन हमारी डेथ लाइन है, हमने मरते दम तक नूरुल्लाह नूर कोर्स के अगले स्टेप्स करते ही जाना है। कोई दुनिया में किताबों की कमी तो नहीं है ना, और पढ़ के कौन से आलिम बन गए। जब बंदे को कोई नेमत मिलती है ना फिर उस नेमत को दुनिया में दूसरों के साथ शेयर करना ये असल में उस नेमत का शुक्रान होता है। तो इस कौम ने तो आप देखिए उस कौम को तबाह किया, अपने ऊपर लीजिए। उन्होंने तो ऊंटनी मांगी फिर उस ऊंटनी को खुद ही मार दिया, और उन्होंने ऊंटनी को मारा वो बच्चा भी कहते हैं रोता हुआ उसके बाद पहाड़ के पीछे गुस्सा नहीं नजर आया। हजरत साले ने उनको धमकी दी कि देखो तुमने अब अल्लाह की नेमत की नाकदरी की है न शुक्री की, अब तुम पे अजाब आएगा। और अल्लाह की एक सुन्नत लिख ले, अल्लाह किसी को नेमत ना दे ना तो इतना नहीं गौर करता उस पर, नेमत मिले और कोई बंदा उस नेमत की कदर ना करे सीधा अल्लाह के अजाबों को पुकारने की बात है। सिंपल सी मिसाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का वाले, मक्का वालों को अल्लाह ने चुना, पूरी दुनिया की पंप एंड शो को छोड़कर एक बैरन जगह को अल्लाह ने चुना अपने नबी के लिए। आप देखे कि मक्का वालों ने उनकी कदर नहीं की। इधर अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के मदीना जाते हैं, मक्का में कहत आ गया, बदर में उनके सब बड़े बड़े सर कुचल दिए गए। तो नेमतों के साथ फिर नेमतों की आजमाइशों से बचने की दुआ भी करने की जरूरत है, और फिर उसकी वुस्सत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगली कहानी फिर वही कौम है जिसको सुनते ही घिन आने लगती है, कौम लूत। कज़बत कौम लूत, कज़बत कौम लूत निल मुरसलीन, इसी तरह झुटलाया लूत की कौम ने भी मुरसलीन को। इस قال لهم اخوهم لوط الا تتقون, जब कहा इनसे इनके भाई लूत ने क्या तुम नहीं डरते। सवाल पैदा होता कि लूत इनके भाई कैसे थे, ये तो किसी और कौम की तरफ गए थे ना। तो इशारा इसमें वही है कि हजरत लूत जब वहां गए थे तो फिर वहीं सेटल हो गए थे। आपको पता ना कि हजरत लूत जो थे ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे, तो इब्राहिम के कहने पर ये चले गए थे दूसरी बस्ती में सदूम नाम की, तो उसकी तरफ इशारा है। मैसेज बिल्कुल वही है, कौम को जवाब क्या दिया, ला तत्तकून। यहाँ से पता चलता है ना तकवा को बहुत ही बड़ी दौलत है, हर नबी आके यही बात कह रहा है। और साथ ही नीलकुम रसूल अमीन, मैं यकीनन तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह वतीउनी, बस तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, और मैं तुमसे इस पर किसी उजरत का तालिब नहीं हूँ। क्योंकि इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरी उजरत तो है रब्बुल आलमीन के जिम्मे। सेम मैसेज। आप इसके बाद कौम का जुर्म देखिए, अता तुन जुकरान मिनल आलमीन, क्या तुम जहानों में, क्या तमाम जहानों में तुम ही शहवत के लिए मर्दों के पास जाते हो। यानी दुनिया में तुमसे पहले किसी ने ये काम किया ही नहीं कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मर्दों के पास जाए। किसी कौम ने तो छोड़िए जानवर तक ये काम नहीं करते। وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, और तुम छोड़ देते हो जिनको तुम्हारे लिए पैदा किया है तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियों में से। मुराद क्या, नंबर एक के बीवियों को छोड़ के मर्दों के पास जाते थे, और दूसरे इसका और मफहूम क्या कि बीवियों के पास भी गैर शरई तरीके से जाते थे। जिस रास्ते से, जिस तरीके से अल्लाह ने जाने का हुक्म दिया सूरह बकरा में आप पढ़ चुके हैं कि नसाउकुम हरसुल्लकुम फातु हरसकुम अन्ना शेतुम, जहां से अल्लाह ने आने का हुक्म दिया वहां से आओ। لیکن بلن تم قوم عادون، تم تو حد سے بڑھنے والی قوم ہو. قوم لوط کا ذکر آتا ہے تو بکائیاں آنے لگتی ہیں. دیکھیے باقی قوموں نے گناہ کیے، پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں بڑی عمارتیں بنائی، ٹھیک ہے انسان کی طبیعت میں ہے شو، تھوڑا سا اس کا جذبہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے. اگلی اس کے بعد قوم پڑھیں گے حضرت شعیب کی قوم، ناپتول میں تمی کی، بس سمجھ آتی. اس قوم کا جرم دیکھیے کہ انہوں نے وہ گندا کام کیا جو انسان کی طبیعت میں نہیں، اور آج یہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کو نہ صرف یہ کہ قبول کر لیا گیا، عورت عورت سے شادی کر لے، مرد مرد سے کر لے. اب تو اگلے 10 سال پر دیکھیے گا جب کسی کی شادی کا انویٹیشن آئے گا تو لوگ پوچھیں گے کہ ایک عورت اور مرد کی ہے یا مردوں مردوں کی، عورتوں عورتوں کی، یعنی یہ لیگل ہو گئی یہ شادی. آپ کو یہ پتہ نا، دو عورتوں کی شادی چرچ نے اپروو کر دی، پہلے پریسٹ نے اپنے آپ کو اقرار کر دیا کہ یس آئی ایم گے اور اٹس بیڈ ناٹ بیڈ. اور ظلم کیا، سارا پلڑا پھر اللہ پہ ڈالتے، کہتے ہیں یہ جینیٹک کوڈ ہے، یہ جینس میں، یہ انسان کی طبیعت میں. تو قوم لوط سے پہلوں کو کیوں خیال نہیں آیا؟ میں صرف طبیعت پہ بوجھ پڑ رہا ہے، لیکن یہ بات اس لیے کرتی ہوں کہ اس گندگی سے آپ بچنے کی کتنی ضرورت ہے. مت سوچئے کہ یہ نان مسلم کا شعار رہ گئے اور ویسٹرن سٹائل ہے، یہ مسلم سٹائل بھی بنتا جا رہا ہے. بلیو می، ایک ان میرڈ بچی نے اپنے ایک مسلمان ملک میں مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ واٹس رانگ ان دس، اگر دو لڑکیاں آپس میں کوئی خوش ہو لیتی ہیں تو کین یو بلیو. اور میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ جب میں اس کی عمر کی تھی، ہم نے تو کبھی اپنی ذاتی چیزیں نہیں ماں کے سے شیئر کی تھی. کبھی بتاتی تھی لڑکیاں اپنی شادی سے پہلے اپنی ماں کو کہ پیریڈز آ گئے ہیں یا نماز نہیں، وہ سوال بتائیں، کبھی بتائیں؟ کئی دفعہ ہو جاتے تھے پھر بتا، اور ماں کو چھپاتے تھے، پوتے ڈرتے، ماں سے تو ہمیشہ ہی بات ہوتی تھی. اور وہ درس کے بعد ایسے مجھ سے پوچھ رہی تھی جیسے کسی سے آپ کسی جگہ کا ایڈریس پوچھیں کہ اس میں غلطی خرابی کیا، فرق کیا پڑتا ہے اسے، اور اٹس کیور، یہ بھی مسئلہ اٹس کیور. کہ لڑکے لڑکی کا تعلق ہوگا تو مائٹ بھی خطرے ہیں اس میں، یہ آج مسلمانوں کا مسئلہ اس کے لیے. اور جو چیزیں وقت کے ساتھ جائز ہوتی جا رہی ہیں پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوڈز، یہ انسان کا جینیٹک پرابلم ہے، یہ جینیٹک پرابلم نہیں ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نیچر میں نہیں ہے، یہ نرچر میں ہے، یہ آپ کے ماحول کی گندگی ہے. ایک منٹ کے لیے سوچیے، صرف وہی بات آج مجھے بات کہتے ہوئے یاد آ رہا ہے کہ آج کے دور کا جہاد ہے کہ ڈی گلیمرائز کر دو ان گناہوں کو. کتنا خوبصورت عمل شیطان کہتا ہے، کسی کی گندگی پڑی ہو باہر کوئی ہاتھ لگائے گا؟ اپنے بچے کی گندگی ماں ہی صاف کرتی ہے، دوسرا تو نہیں کرتا. تو وہ گندگی ہو یا گندگی کی جگہ ہو، دل مند ہے. اللہ نے ہر عضو کا ایک کام رکھا ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو کان سنتے ہیں تو زبان کھاتی. کوئی کھانا کھاتے ہوئے کبھی کان میں کھانا ڈالتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آنکھوں میں پانی کے قطرے ڈال دے؟ اللہ نے جسم سے ہر کام لیا، معدے سے کام ہضم کا لیا، آنکھوں سے دیکھنے کا لیا. اللہ نے انسان کو پرائیویٹ پارٹ نسل کی بقا کے لیے دیا. تو کتنی جہالت کی بات ہے کہ وہ اس کو انسان گندگی میں لے. شیطان ناچتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے سل خوشی اس میں. اور دکھ کی بات یہ کہ اب ہماری نسلیں باہر دنیا سے جو دیکھتی ہیں وہ کہیں گے خرابی کی، یہ مسلمان خوش ہی نہیں ہو سکتے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ حضرت نوح نے جب ان کو، حضرت لوط نے جب ان پہ تنقید کی، قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین، اے لوط اگر تو باز نہ آیا نا تو تو یہاں سے نکالے وہ میں سے ہوگا، چل بھاگ. حضرت نوح کو کیا کہا گیا تھا؟ مرجومین، رجم کر دیں گے. ان کو دھمکی دے رہے ہیں ہم تجھے نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین، انہوں نے کہا بھی میں تو تمہارے ان طور طریقوں سے سخت بیزار ہوں. قالین، یہ اردو کا قالین نہیں ہے، قاف لام یا سے بھی ہوتا ہے اور قاف لام واو سے بھی ہوتا ہے، بیزار، مجھے بالکل تمہارے یہ طریقے پسند نہیں. اور یہاں لی عملکم کو ہائی لائٹ کیجئے، تم سے نہیں، تمہارے ان طریقوں سے بیزار ہوں. اسلام کی نفرت گناہ سے ہے، گناہگار سے نہیں ہے. حضرت اور حضرت لوط جس دور میں تھے، آپ کو پتا سوائے حضرت لوط کے گھر کے ہر گھر میں یہ فیل ہو رہا تھا. آگے آپ پڑھیں گے، صرف ایک گھر تھا پوری بستی میں اور وہ لوط کا گھر تھا، ورنہ ہر گھر میں یہی گندگی آ گئی. تبھی تو اللہ نے پھر صفایا کر دیا نا. آج بھی آپ دیکھیے، ابھی تو یہ ویسٹ میں شروع ہوئی ہیں نا باتیں، چرچ میں بات گئی، گورنمنٹ پہ گئی، چند بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، پبلک ابھی بھی اس کو پسند نہیں کرے گی. تو بڑی بات تھی 5 سال، 10 साल 15 साल, और जो आज के लिबरल मुसलमान जो शराब को जायज कह रहे हैं पार्टियों में, जो सूद को कह रहे हैं कि नागुजीद है, क्या इस बात से वो रुकेंगे? जी
मैं पाकिस्तान में एक भाई लॉयर है, तो मैं दो लड़कियां खुद मिली हूँ उनसे, मेरे भाई ने मिलवाया कि दोनों आपस में शादी करना चाह रही है, खुद मिलकर आए उनसे शादी करना चाह रही है, तो उनकी इजाजत दिलवाई ऑपरेशन करे डॉक्टर ने।
तो फिर आप बताइए कि और फर्क क्या है, जो देखेंगे जो सुनेंगे वो असर होगा। इतनी जरूरत है अपनी नस्लों को तकवा की बेड़ियों में डालने की, कुरान से जोड़ने की। कहने से भी कुछ नहीं होगा लेकिन अंदर इस चीज की नफरत हो। रब्बी नजनी वहली मिम्मा यामलून, परवरदिगार तू निजात दे मुझे और मेरे घर वालों को इनके इस अमल से। ये दुआ आज सब याद रखें। आज हम मुसलमानों को अपनी नस्लों के लिए, अपने लिए ये दुआ करने की जरूरत है। और याद रखिए, शोहर बीवी के ताल्लुक में अगर हराम तरीका आ जाएगा ना, तो वो घर जिसको आप कह लीजिए कि जहन्नुम का टुकड़ा बन जाएगा, खुश कोई भी नहीं आपसे होगा फिर भी। इसलिए ऐसी चीजों पे तो इंसान कभी भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हो सकता। दुआ मांगी, अल्लाह मुझे और मेरे घर वालों को बचा। और आप पता है, सिर्फ दो बेटियां थी, हजरत लूत का बेटा नहीं था, और जब ये बस्ती से निकले सिर्फ इनके साथ दो बेटियां थी, इनकी इवन अपनी बीवी पीछे थी, उसका जिक्र आ रहा है। फनजैना वअहलहु अजमईन, तो हमने निजात दी इसको भी और इसके सब घर वालों को भी। इल्ला अजूसन फिल गाबिरीन, सिवा एक बुढ़िया के जो पीछे रहने वालों में से थी। अजूस बूढ़ी औरत, जो आजिज हो चुकी है बच्चा पैदा करने से, बुढ़ी जैसा कहते ना, बुढ़ी खुसत। गाबिरीन गाबिरतुन, गाबिरीन के गाबिर से जमा है गाबिरीन। गुबार का लफ्ज़ उर्दू में सुना होगा, पीछे रह जाता है ना, वो ये गुबार कि वो पीछे थी। क्यों? वो खुद ऐसी नहीं थी लेकिन उसकी हमदर्दियां अपने खानदान से थी। देखिए, हजरत लूत बाहर से आए थे उस बस्ती में, सदूम नाम की, ये औरत वहां की लोकल थी। हजरत लूत ने जब तंकीद शुरू की तो इसने अपने शौहर का साथ देने के बजाय इस मिशन में अपने खानदान बिरादरी का साथ दिया। घर पे झंडा लटका देती थी, इशारे कर देती थी, कोई लड़का आया हुआ कोई ऐसा, तो बस्ती वाले भागते हुए आ जाते थे। सिर्फ इस वजह से नबी की बीवी होने के बावजूद नहीं बची। सुम्म दम्मरनल आखरीन, फिर हमने उठाकर पटक दिया बाकियों को। क्या गुस्सा आया होगा अल्लाह को, बाकियों को सबको ऊपर से उठाया फेंका पहला साहब, फिर वमतरना अलैहिम मतरन, फिर उन पर बरसाई एक बुरी बारिश। फसा मतरुल मुंजरीन, कितनी बुरी है एक बारिश जो उन पर बरसाई गई जिनको खबरदार किया गया था। देखिए, इस कौम पे तीन अजाब आए थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर इस तरह से इनकी वजह से छाज होता है ना, तो रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राइल ने अपना पर यूं इधर नीचे किया तो इनकी पूरी बस्ती हजरत जिब्राइल के परों पे आ गई। फिर उनको लेके और ऊपर गए और ऊपर जाके सुम्म दम्मरना, ऊपर से इनको उल्टा फेंका। जब उल्टे जोश से पड़े तो जमीन के अंदर धंस गए, जमीन के अंदर धंसे। आज भी बहरे मुर्दार, जिसको आप डेड सी कहते हैं, तो वहां इनकी बस्ती ऊपर से जब गिरी थी तो वहां खड़े पड़ गए और जमीन में जलजला आया। और उसके बाद तीसरा जाविता के ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई और पत्थरों पे नाम लिखे हुए थे, नोकीले सर से लेकर घुसते और प्राइवेट पार्ट से जिस्म से बाहर निकले। जैसा फेल वैसी सजा। दिमाग से इस काम का आगाज होता है, याद रखिए। ये गंदी चीजें ब्रेन से आती हैं और आखिरी इंतहा जो है पत्थर वहां जाके गिर गए। इन आयतन, बेशक इसमें अलबत्त एक निशानी है। वमा कान अक्सर मुमिनीन, लेकिन इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं है। वइन्ना रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, यकीनन आपका रब जबरदस्त भी है रहम करने वाला। क्या निशानी है आपके और मेरे लिए इसमें? हम सब अपने आप से पूछें, हम इन सारी चीजों को पढ़ते हुए क्या कर सकते हैं? देखिए, अब तो सोने के दिन गए और वल्ला ही कोई अंधा एतमाद ना करे, अपने सिवा आप किसी की कसम नहीं दे सकते। इसके लिए स्टैंड लेने की जरूरत है और इसके लिए अपने बच्चों के अंदर तकवा भरने की जरूरत है। बच्चों का नाम तो हम ऐसे ही ले देते हैं, सच्ची बात है। अभी तो कई बड़े भी इसमें फंसे हुए हैं। जिसका ये मसला हो उसको अपनी नजर को पाक करना चाहिए। अकेले ना रहने दें, साथ एक बिस्तर में ना सोने दें, स्लीप ओवर्स नहीं है। अकेले में जाना, आपने क्यों कहा कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो और 10 साल का होने तो उसका बिस्तर अलग कर दो और नमाज उसके लिए लाजिम है। सारी चीजें अपने घरों से निकाल के फेंक दे। एक छोटा सा क्लिप था, मैंने आपको भेजा था जो बच्चे कार्टून देखते हैं आजकल, कल परसों मुझे आया कोई, बल्कि भेजा आपको तो नहीं, आपको कल पे सलीम वाला भेजा था ऑनलाइन इधर, यानी कल परसों एक छोटा सा क्लिप था, तो वो उसमें ये दिखा रहे थे कि हमारे बच्चों को कार्टून्स में क्या मैसेज जाते हैं। मैं इंशाल्लाह अगर हुआ ना याद कराएं तो मैं भिजवाऊंगी, आप देखिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्राइमरी स्कूल के क्यूरिकुलम में अब इसको पढ़ाया जा रहा है। क्या कहा था?
आपको फॉरवर्ड करूँ?
नहीं आप बताइए, मैं आपकी बात।
उन्होंने बनाई है अबाउट टू पीपल हु लव ईच अदर, एक बच्चे को लेके उसका एक अंकल है और दूसरा अंकल है, और वो किस तरह इट्स अ डिफरेंट सेटअप बट इट्स एक्सेप्टेबल।
यानी कि इट्स ओके, बच्चों को सिखाया जा रहा है ये किताबों में कि इट्स ओके, एक्सेप्टेबल है। जी आप ही रहो। नहीं आप ये बताइए, क्या बाकी सारे टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिए, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी जूलॉजी के यही पढ़ाने वाला टॉपिक रह गया, और किनको? प्राइमरी के बच्चों को। आप कभी सोचे ना तो आपकी रातों की नींद उड़ जाए। बिल्कुल वही वक्त है कि जमीन के ऊपर से जमीन के पेट में होना ज्यादा खुशकिस्मती होगी, फितनों का दौर है, और फिर ये कुरान की डोरियां हाथ में ना बंधे। ये आप नहीं आ रही क्लास में, असल में आपके बच्चे आ रहे हैं, आप उनको लेकर आएंगी, तो जिस दिन आपके यहां से ये डोरी खुली आप कहेंगे सोके ये बहुत ही टू मच है। यही इस किताब की सिक्योरिटी है। आपको तो ना अल्लाह ताला ने एक डबल चेक रखा हुआ है, आप आएंगे तो आपको सब अच्छा लगेगा, आप नहीं आएंगे तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि आप सोचेंगे मैं एक्सट्रीम पे चली गई थी, मैं ज्यादा ही चली गई थी आगे, और आप आते रहेंगे तो आप हर दिन रोएंगे कुछ भी नहीं कर रही, जो हक है वो कहां दे पा रही, रोज लेट हो जाती हूं, ये हालात होते हैं। तो बड़ी जरूरत है इस बात पे, यकीन करें ये आज के दौर का जिहाद है, जाहिद हम भी जिहादन कबीरा। ये है कि आज करप्शन और गंदगी और फिल्थ, और आप देखिए फिल्थ ही है ये, इसमें खूबी क्या है, इसमें अट्रैक्शन क्या है, इसमें कशिश क्या है, और आज इस पे आप खोल पड़े तो सही के दुनिया में इसको कैसे ग्लैमराइज करके पेश किया जा रहा है, और जस्ट फॉर अ चेंज टेस्ट जरूर करेंगे लोग, और है कितनी गंदी चीज। किसी से कहना मैं वॉशरूम से फारिग हुआ, जाओ मेरी गंदगी साफ करो, तो कोई करता? लेकिन शैतान वो गंदगी में नाचता है, क्योंकि दिल थक जाता है ना। लेकिन ना शुरू में क्या था, शादी नहीं, बोरिंग, बगैर शादी के साथ बॉयफ्रेंडशिप, लिविंग टुगेदर, कब तक रहते? 10-20-25 साल रह लिया, अब समथिंग न्यू, तो फिर लड़के लड़कों में आ गए, कुछ हयात ही लड़कियों की खैर है, फिर 10-20 साल गुजर गए तो अब वो चलो जी दो थे, अब लेस्बियनिज्म जानवरों के साथ, और आज के दौर का आपको मसला पता, पेडोफिलिया यंग बच्चों के साथ, और वो कहते हैं बिकते हैं बच्चे। मैंने आपको पीछे एक दफा हल्का सा इशारा भी सुनाई थी कोई रिपोर्ट कि किस तरह से गाहते और हांगकांग और सिंगापुर और इधर के मुल्कों से आते हैं इन मुल्कों में, बच्चों के स्कूलों में उनको ले जाया जाता है, फिर उनको दिखाए जाते हैं कौन सा चाहिए, कीमतें और बोलियां लगती हैं, फिर उन बच्चों को किडनेप करके उनके हाथों में उन मुल्कों में भेजा जाता है, बिल्कुल स्लेवरी है, गुलामी है, और उसको इंजॉयमेंट के नाम पर फिर पेश करते हैं बड़ों को। لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صرف امنوا اور عملوا الصالحات نہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آج کے دور میں یاد رکھیں جس نے تواصی بالحق نہیں کیا اور اس کے اوپر جمنے میں جو تکلیف ہے اس پہ صبر نہیں کیا وہ ان اللہ ہی مجرم ہے تواصی بالحق ہے کہ حق کا پرچار کرو मैं और आप कुरान पढ़ के खाली घर में बैठ के वजीफे करके नहीं बचेंगे। ये जो कुरान आपको तैयार कर रहे हैं ना ज़हनी तौर पे, आप तो मुहसिन हैं इस माशरे के, अगर आप जमे रहेंगे आपको खुद नहीं पता अल्लाह ने आपके आपके जरिए कितनी गंदगी दूर करानी है इस माशरे की और इस दुनिया की। لیکن اس کے لیے جو پہلے تربیت کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں, اس میں سارے جم نہیں پاتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے پر. یہ کچھ لکھتے ہیں کہ چپس از اے نیو پروگرام, اسٹوڈینٹس آر بینگ ٹاٹ ٹو اوور کم ہومو فوبیا از پرائمری اسکول ان پرائمری اسکول. بہرحال جو بھی آپ کے پاس اس کی انسٹرکشن, آپ کے اس کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے تو وہ دکھا دیں, شیئر کرنے لیے ہوں گی تو کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی جان مال اور عزتوں کی حفاظت کرے. وقت پورا ہو گیا, انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سبق کے اینڈ پہ میں نے آن لائن سے پڑھا تھا, آپ لوگوں میں سے کسی نے لکھا تھا, صرف ایک دو منٹ آپ سے لوں گی, زیادہ نہیں لوں گی, جو نکلنا چاہیں خاموشی سے نکل جائیں. لیکن بریک کے دوران میں نے پڑھا تھا آپ میں سے کسی کا کوئسچن کہ آیت نمبر 130 ہے یا کیا تھی, کہ وہ نہیں سمجھ آئی. ٹھہری میں کھول لوں. ہاں جی, وہ میں نے دیکھ لی تھی بریک میں تو میں بھول گئی ان کو ذکر کرنا. کون سی رمایت؟ جی جی, آپ میں سے کسی کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی. ویزا بتش تم بتش تم جبارین, اور جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو جبار بن کر. فتق اللہ واتیونی, اللہ سے ڈرو, بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. تو بیسیکلی اس میں سمجھ لیجئے, صرف چند سیکنڈ, اٹھ سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے, ٹھیک ہے؟ ابھی بات تو ہو ہی رہی ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ اس میں جو جبارین آ رہا ہے, اس لفظ سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے. اور جب ہم ان کے سارے روایت کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو بڑے لیڈر تھے نا, وہ بگاڑ کا شکار ہو گئے تھے. جس طرح آپ کہیے کہ لوگوں سے ٹیکس لینے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹول لینا, اور راستوں میں جو لوگ ہوتے تھے نا, ان کو پکڑ کر ان سے غلط کام لیتے تھے. تو یہاں یہ اشارہ ہے کہ جب تمہارا کسی کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے تو بڑے زور کا ہاتھ مارتے ہو. اشارہ ان کے ظلم, جبر اور بربریت کی طرف ہے کہ تم ایسے کام کر کے دوسروں کو تکلیف دیتے ہو. حکمرانوں کے سینس میں لے لیں تو مراد یہ ہوگا کہ ظالم حکمران ہو. اسی طرح چور, ڈاکو اور اس طرح کے راہزن ہیں تو مراد یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کرتے ہو. تو امید ہے کہ بات واضح ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اذان لگا دیں, اذان بند کر دیے. اٹس اوکے, میں ادھر سے لگا دیتی ہوں, نو پرابلم.
جزاکم اللہ خیرن کیسی واسن سازت دیجیے. الحمد للہ. سو ہم بھی اپنی کلاس کو کنکلوڈ کریں گے, اور ماشاءاللہ بہت سارے پوائنٹس ہم نے لکھے ہیں, بہت ساری ہم نے چیزیں نئی سیکھی ہیں. انشاءاللہ کل اس پر تھوڑا بہت ڈسکشن کریں گے. اور آپ لوگ سب اپنے لیسن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا وہ جو ایڈوائس ملی تھی ہم سب کو, وہ یاد ہے نا کہ ہم نے اپنے لیسن کا ڈیلی کچھ نہ کچھ پورشن سب کے ساتھ شیئر کرنا, اور نہ جسٹ کہ گھر والے جن تک ہماری ایزی ایکسیس ہے, بلکہ ہم نے میڈیا کو استعمال کر کے آگے بھی پہنچانا ہے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن جزا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.